एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने अमेरिकी लेखन पर ना एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है और जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं जोन डिडियन की क्लासिक किताब द व्हाइट एल्बम। ये 1968 से 1978 उस दशक में लिखे गए निबंधों का संग्रह है।
हाँ,
और वो समय था जब अमेरिका में आप कह सकते हैं एक बड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक मंथन चल रहा था।
और कमाल की बात यह है कि उस दौर की जो उथल पुथल थी, वो भ्रम, वो बेचैनी आज के दौर से कितनी मिलती जुलती लगती है ना।
हाँ बिल्कुल, शायद इसीलिए डिडियन को पढ़ना आज भी इतना जरूरी लगता है।
ऐसा लगता है जैसे वो हमारे ही समय की नब्ज पकड़ रही हों।
सही कहा, जब चीजें इतनी तेजी से बदल रही हों, पुरानी मान्यताएं टूट रही हों और समझ ना आए कि किस पर यकीन करें, कौन सी कहानी माने, तब डिडियन का लेखन वो एक तरह से आईना दिखाता है।
हाँ, तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। सबसे पहले लेखिका से ही मिलते हैं।
हाँ जरूर।
तो जोन डिडियन, आखिर कौन थी ये लेखिका जिनकी शैली इतनी अलग और नजर इतनी पैनी थी?
जोन डिडियन मतलब 1934 में जन्म, 2021 में मृत्यु। वो अमरीकी पत्रकारिता और साहित्य की एक बहुत ही अहम आवाज़ थी। कैलिफोर्निया में जन्मी, वहीं पली बड़ी और ये जगह उनके लेखन का एक केंद्र बिंदु रही हमेशा।
कैलिफोर्निया?
हाँ, वो कैलिफोर्निया को सिर्फ एक राज्य की तरह नहीं देखती थी, बल्कि वो उसे अमेरिकी सपने, उसकी चमक और उसके अंधेरों के प्रतीक की तरह देखती थी।
अच्छा, उन्हें न्यू जर्नलिज्म का हिस्सा माना जाता है, ये क्या था, मतलब ये क्या चीज थी?
हाँ देखिए, न्यू जर्नलिज्म वो दौर था जब पत्रकारिता सिर्फ तथ्यों को मतलब सपाट दम से पेश करने से आगे बढ़ रही थी। इसमें लेखकों ने साहित्यिक तकनीकों का इस्तेमाल किया,
जैसे
जैसे कहानी कहने का अंदाज, किरदारों का चित्रण और सबसे बढ़कर लेखक की अपनी आवाज, अपना नजरिया, उसका अपना अनुभव। डिडियन इसमें माहिर थी।
हाँ, सुना है उनकी भाषा एकदम सधी हुई, कम शब्दों में ज्यादा कहने वाली।
बिल्कुल, और भावनाओं से थोड़ी दूरी बनाए रखती हुई, जैसे कोई सर्जन चीर फाड़ कर रहा हो, बहुत ऑब्जेक्टिव।
हाँ, उनकी शैली में वो एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, लेकिन असर बहुत गहरा होता है। और द व्हाइट एल्बम से पहले भी उनकी एक किताब आई थी, स्लाउचिंग टुवर्ड्स बेथलेहम, उसने भी काफी हलचल मचाई थी।
बिल्कुल बिल्कुल, उसमें उन्होंने 60 के दशक का जो हिप्पी आंदोलन था, उसके बिखराव और मोहभंग को पकड़ा था। डिडियन की खासियत ये थी कि वो सिर्फ बड़ी घटनाओं पर नहीं लिखती थीं, बल्कि उस दौर की भावना, उस माहौल को पकड़ती थीं। और सबसे अनोखी बात यह है कि उन्होंने अपनी निजी जिंदगी की परेशानियों, अपनी शारीरिक और मानसिक तकलीफों को भी, जैसे उन्हें माइग्रेन होता था, नर्वस सिस्टम की दिक्कतें थीं, उनको भी समाज को समझने का एक लेंस बना लिया।
मतलब उनकी अपनी अंदरूनी बेचैनी बाहर की दुनिया की बेचैनी को समझने का जरिया बन गई। ये तो कमाल का नजरिया है, अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लेना।
हाँ, यही उन्हें बहुत खास बनाता है। वो हॉलीवुड के ग्लैमर से लेकर राजनीतिक उथल पुथल तक सब कुछ अपनी इसी पैनी और थोड़ी कह सकते हैं बेचैन नजर से देखती थी।
चलिए अब किताब पर आते हैं, द व्हाइट एल्बम। ये सिर्फ निबंधों का संग्रह है या कुछ और भी?
इसका नाम भी काफी दिलचस्प है।
हाँ, दिलचस्प इसलिए भी क्योंकि ये नाम बीटल्स के मशहूर एल्बम से लिया गया है, जो खुद भी अलग अलग गानों का एक बिखरा हुआ सा संग्रह लगता था, है ना?
हाँ बिल्कुल, तो डिडियन की किताब भी वैसी ही है। ये कोई पारंपरिक किताब नहीं है जिसमें शुरू से अंत तक एक ही कहानी चले। ये निबंधों का संग्रह है जो 1968 से 1978 के दशक को, खासकर कैलिफोर्निया के माहौल को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसमें संस्मरण भी है, रिपोर्टिंग भी है और गहरी सांस्कृतिक आलोचना भी, मतलब मिलाजुला है सब।
तो फिर इसका केंद्रीय विचार क्या है? अगर इसे एक लाइन में समेटना हो तो डिडियन क्या कह रही हैं? मुझे पढ़ते हुए ऐसा लगा जैसे वो कह रही हों कि वो सारी बड़ी कहानियां जिन पर समाज टिका था, वो टूट रही थीं।
बिल्कुल सही पकड़ा। उनका मुख्य तर्क यही है कि 60 के दशक के अंत तक आते आते अमेरिका में वो सारे ढांचे, वो सारी कहानियां बिखरने लगी थीं जिनके सहारे लोग अपनी जिंदगी और दुनिया को अर्थ देते थे।
जैसे कि?
जैसे तरक्की की कहानी, पारंपरिक परिवार का आदर्श, सरकार और संस्थाओं पर भरोसा, सब कुछ सवालों के घेरे में था। ऐसा लग रहा था मानो जिस स्क्रिप्ट को देखकर सब अपनी भूमिका निभा रहे थे, वो स्क्रिप्ट ही गुम हो गई हो।
स्क्रिप्ट ही गुम हो गए। और जब स्क्रिप्ट खो जाए तो क्या होता है? क्या लोग नई स्क्रिप्ट ढूंढते हैं या बस उस बिखराव में जीना सीखते हैं? डिडियन क्या दिखाती हैं?
डिडियन दिखाती हैं कि ये दौर व्यक्तिगत और सांस्कृतिक दोनों स्तरों पर गहरे विघटन का था। किताब का मकसद सिर्फ घटनाओं की लिस्ट देना नहीं है, बल्कि उस बिखराव, उस भ्रम, उस अजीब सी बेचैनी की भावना को पाठक तक पहुंचाना है। वो हमें सिर्फ बताती नहीं, वो महसूस करवाती हैं।
महसूस करवाती हैं।
हाँ, ये उस दशक का एक तरह से मनोवैज्ञानिक एक्सरे है।
अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, किताब के कुछ खास हिस्सों या निबंधों पर बात करते हैं। सबसे पहले तो शीर्षक निबंध, द व्हाइट एल्बम, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध है।
हाँ, और इसकी शुरुआत ही उस मशहूर पंक्ति से होती है जिसके बारे में हमने थोड़ी बात की, वी टेल आर सेल्फ स्टोरीज इन ऑर्डर टू लिव।
हम जीने के लिए खुद को कहानियां सुनाते हैं।
हाँ, डिडियन का कहना था कि उस दौर में यही कहानी सुनाने की, अर्थ गढ़ने की प्रक्रिया चरमरा रही थी।
ये पंक्ति अपने आप में इतनी शक्तिशाली है, आज भी कितनी सच लगती है। हम सब अपनी जिंदगी को समझने के लिए कोई ना कोई कहानी तो बनाते ही हैं, है ना?
बिल्कुल, और डिडियन इस बात को सिर्फ कहती नहीं बल्कि निबंध की बनावट से दिखाती भी हैं। ये निबंध किसी सीधी कहानी की तरह नहीं चलता, ये कोलाज जैसा है, टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया।
टुकड़ों को जोड़कर कैसे?
इसमें डिडियन अपनी निजी चीजें जैसे चक्कर आना, मितली, डॉक्टरों की रिपोर्ट जो कहती है कि उनका नजरिया निराशावादी है, और बाहरी दुनिया की घटनाओं को एक साथ रखती हैं बिना किसी क्रम के।
जैसे कि क्या उदाहरण है?
जैसे वो रॉक बैंड द डोर्स के एक रिकॉर्डिंग सेशन का जिक्र करती हैं, फिर अचानक ब्लैक पैंथर्स की मीटिंग का, फिर चार्ल्स मैनसन के अनुयायी लिंडा कसाबियन के मुकदमे के लिए ड्रेस खरीदने जाने का। ये सब चीजें एक साथ बिना किसी स्पष्ट जुड़ाव के आती हैं।
अरे, ये पढ़ने में थोड़ा चौंकाने वाला या शायद भटकाने वाला भी लग सकता है। ऐसा लगता है जैसे कोई जैपिंग कर रहा हो, कभी निजी दुनिया, कभी बाहरी दुनिया का कोहराम।
हाँ, और यही तो डिडियन का कमाल है, निबंध की ये खंडित शैली, ये बिखराव ही उसका संदेश है। वो मानो कह रही हो कि जब हकीकत खुद ही इतनी बिखरी हुई हो, जब घटनाओं का कोई मतलब ना निकल रहा हो, तो उसे एक सीधी सादी साफ सुथरी कहानी में बांधना झूठ होगा।
अच्छा,
उस बिखराव को, उस उलझन को वैसे का वैसा दिखाना ही उस दौर की सच्ची तस्वीर पेश करना है। रूप और तथ्य यहाँ एक हो जाते हैं।
वाह, ये तो वाकई सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका है, मतलब लिखने के तरीके से ही बात कहना।
बिल्कुल।
अब किताब के दूसरे हिस्से पर आते हैं, कैलिफोर्निया रिपब्लिक। डिडियन का कैलिफोर्निया से खास रिश्ता था, आपने बताया।
हाँ, वो कैलिफोर्निया को अमेरिकी सपने के प्रतीक के तौर पर देखती थी, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई को भी उधेड़ती थी। जैसे एक निबंध है, होली वाटर।
होली वाटर, पवित्र जल।
हाँ, उसमें वो बताती हैं कि कैलिफोर्निया का स्वर्ग, वो हरी भरी जमीन, वो फलते फूलते शहर, ये सब दरअसल पानी की विशाल पाइपलाइनों, बांधों और जटिल इंजीनियरिंग पर टिका एक कृत्रिम निर्माण है। पानी को सैकड़ों मील दूर से लाया जाता है। वो दिखाती हैं कि ये प्राकृतिक खूबसूरती कितनी नाजुक और इंसानी नियंत्रण पर निर्भर है।
अच्छा, मतलब जिसे लोग कुदरत का करिश्मा समझते, वो असल में इंसानी इंजीनियरिंग का कमाल है। और वो गेटी म्यूजियम वाला निबंध, वो भी इसी तरह का कुछ दिखाता है।
बिल्कुल, गेटी म्यूजियम एक बेहद अमीर आदमी द्वारा बनाया गया म्यूजियम है, जो एक प्राचीन रोमन विला की हूबहू नकल है।
नकल?
हाँ, डिडियन इसे देखती हैं और लिखती हैं कि ये कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, है तो नकली ही, पैसे से खरीदा गया इतिहास। ये कैलिफोर्निया की उसी कृत्रिमता, उसी सतह पर बनी चमक का प्रतीक बन जाता है, जैसे कैलिफोर्निया खुद को एक इतिहास, एक संस्कृति देने की कोशिश कर रहा हो जो उसकी अपनी नहीं है, उधार ली हुई।
ये तो कैलिफोर्निया के मिथक पर सीधी चोट है। फिर एक हिस्सा नारीवादी आंदोलन पर भी है, विमेन। इसमें डिडियन का रुख थोड़ा आलोचनात्मक लगता है।
हाँ, ये हिस्सा थोड़ा विवादास्पद रहा है। डिडियन 70 के दशक के नारीवादी आंदोलन की कुछ बातों से, कह सकते हैं, सहमत नहीं थी। उन्हें लगता था कि आंदोलन के नेता अक्सर किताबी सिद्धांतों और विचारधाराओं में ज्यादा उलझे रहते हैं।
अच्छा।
और आम महिलाओं की जिंदगी की जटिलताओं, उनकी व्यक्तिगत इच्छाओं, उनके अंदरूनी विरोधाभासों को नजरअंदाज कर देते हैं।
मतलब उन्हें लगा कि नारीवाद भी एक और बड़ी कहानी गढ़ रहा है जो असलियत की उलझनों को आसान बना रही है।
कुछ ऐसा ही। डिडियन हमेशा किसी भी बनी बनाई विचारधारा को शक की नजर से देखती थी। उन्हें लगता था कि असल जिंदगी सिद्धांतों से कहीं ज्यादा पेचीदा और अव्यवस्थित होती है। वो किसी खांचे में फिट होने वाली सोच के खिलाफ थी।
किताब में सॉजर्न्स नाम का भी एक खंड है जिसमें वो कैलिफोर्निया से बाहर की बात करती हैं। उसमें क्या है?
हाँ, उसमें हवाई जैसी जगहों के बारे में निबंध हैं। एक है इन द आइलैंड्स, उसमें वो हवाई की जो टूरिस्ट वाली छवि है, सुंदर बीच, नीला समंदर, उसको तोड़ती हैं।
वो कैसे?
वो वहां अमेरिकी सेना की भारी मौजूदगी, स्थानीय लोगों और बाहरी लोगों के बीच तनाव, जमीन से जुड़े मुद्दे, नस्लीय और वर्गीय विभाजन, उपनिवेशवाद का जो इतिहास है उसकी परतें, इन सब पर लिखती हैं। वो दिखाती हैं कि जिससे स्वर्ग कहा जाता है वो भी असल में कितना जटिल और तनावों से भरा है।
यानी वो हर जगह चमक के पीछे के अंधेरे को देखने की कोशिश करती हैं। इसी हिस्से में वो अपने माइग्रेन के बारे में भी लिखती हैं, है ना, इन बेड नाम का निबंध।
हाँ, और ये बहुत मार्मिक निबंध है। वो अपने माइग्रेन के दर्द, उस दौरान महसूस होने वाली लाचारी को इतने सटीक ढंग से लिखती हैं। ये एक तरफ उनके निजी शारीरिक और मानसिक संघर्ष को दिखाता है, तो दूसरी तरफ ये बाहरी दुनिया के दबावों, उस दौर की बेचैनी का एक रूपक भी बन जाता है।
रूपक?
हाँ, जैसे शरीर खुद ही उस बाहरी अव्यवस्था पर प्रतिक्रिया दे रहा हो।
अच्छा, और किताब का अंत कैसे होता है? आखिरी खंड, ऑन द मॉर्निंग आफ्टर द 60s, क्या दिखाता है?
इस हिस्से में कुछ बहुत ही आत्मविश्लेषणात्मक निबंध हैं, जैसे ऑन कीपिंग अ नोटबुक।
नोटबुक रखने पर?
हाँ, इसमें वो लिखती हैं कि नोटबुक रखना सिर्फ घटनाओं को दर्ज करना नहीं है, बल्कि ये अपने आप से, अपने बीते हुए स्व से जुड़े रहने का एक तरीका है। ये यादों, भावनाओं, अधूरे विचारों के टुकड़ों को सहेजने की कोशिश है।
ये तो बहुत दिलचस्प बात है। हम सब शायद डायरी या नोट्स इसी उम्मीद में लिखते हैं कि अपने आप को थोड़ा बेहतर समझ सकें।
बिल्कुल। और आखिरी निबंध मालिबू के जीवन पर है, जहां डिडिन रहती थी। वो वहां के शांत सुंदर माहौल का जिक्र करती हैं, लेकिन साथ ही वहां हमेशा मौजूद प्राकृतिक आपदाओं के खतरे का भी, आग, भूस्खलन, बाढ़।
ओहो,
ये मानो फिर से याद दिलाता है कि स्थिरता कितनी भ्रामक और अस्थायी है, और व्यवस्था कभी भी भंग हो सकती है, चाहे वो बाहरी दुनिया की हो या हमारे अपने अंदर की।
तो अगर हम इन सभी हिस्सों को देखें तो इस किताब से कौन से मुख्य विषय या संदेश उभर कर आते हैं? वो कौन सी बड़ी बातें हैं जो डिडियन हमें बताना चाह रही हैं?
सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा विषय है कथाओं का टूटना, कोलैप्स ऑफ नैरेटिव। वो बुनियादी कहानियां या ढांचे जिनके सहारे हम दुनिया और अपनी जिंदगी को समझते हैं, जब वो कमजोर पड़ने लगते हैं या टूट जाते हैं तो क्या होता है, समाज और व्यक्ति पर उसका क्या असर होता है, ये सवाल किताब के केंद्र में है।
बिल्कुल। और दूसरा, मुझे लगता है, व्यक्तिगत और राजनीतिक का गहरा रिश्ता, इंटरसेक्शन ऑफ पर्सनल एंड पॉलिटिकल। डिडियन ये दिखाती हैं कि हमारी निजी जिंदगी की उथल पुथल, हमारी भावनाएं, हमारी सेहत भी उस बड़े सामाजिक और राजनीतिक माहौल से जुड़ी हुई हैं।
हाँ।
ये दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उनकी अपनी बेचैनी उस दौर की सामूहिक बेचैनी का आईना बन जाती है।
एकदम सही। तीसरा महत्वपूर्ण विषय है कैलिफोर्निया का सच, इल्यूजरी नेचर ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक मिथक है, सपनों का, चमक का, नई शुरुआत का। लेकिन डिडियन इस चमक के पीछे की कृत्रिमता, नियंत्रण और छिपे हुए खतरों को उजागर करती हैं। वो दिखाती हैं कि ये स्वर्ग कितना इंसानी इच्छाओं और इंजीनियरिंग पर टिका है और कितना नाजुक।
हाँ, वो पानी वाला उदाहरण याद है। और चौथा, जो नारीवाद वाले हिस्से में भी दिखा, वो है विचारधाराओं से मोहभंग, डिसिल्यूजनमेंट विद आइडियोलॉजी।
हाँ,
डिडियन किसी भी बने बनाए सिद्धांत, किसी भी वाद पर आसानी से यकीन नहीं करती। वो हर विचारधारा की सीमाओं, उसके सरलीकरण को देखती हैं। उन्हें लगता है कि जिंदगी ज्यादा जटिल है।
हाँ, और इसके साथ ही दो और बातें भी हैं। अमेरिकी जीवन में हिंसा की सहज उपस्थिति, परसिस्टेंस ऑफ वायलेंस, चाहे वो मेंसन हत्याकांड हो या राजनीतिक हत्याएं, डिडियन दिखाती हैं कि हिंसा समाज की सतह के ठीक नीचे मौजूद है। और कैसे विद्रोह भी बाजार का हिस्सा बन जाता है, कमर्शलाइजेशन ऑफ रिबेलियन, जैसे हिप्पी कल्चर या रॉक संगीत का बिकना, ये सब भी डिडियन की नज़र से बचता नहीं।
ये सारे विषय मिलकर उस दौर की एक बहुत ही जटिल और बेचैन करने वाली तस्वीर बनाते हैं। किताब में कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं, कुछ साझा करना चाहेंगे?
हाँ, क्यों नहीं। पहली तो वही कालजयी पंक्ति, वी टेल ourselves स्टोरीज इन ऑर्डर टू लिव।
हम जीने के लिए खुद को कहानियां सुनाते हैं।
हाँ, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये मानव स्वभाव की गहरी समझ है।
अर्थ की तलाश हमारी बुनियादी जरूरत है।
और वो अपनी मानसिक स्थिति के बारे में जो लिखती हैं वो भी बहुत असरदार है। आई वॉज सपोज टू हैव अ स्क्रिप्ट एंड हैड मिसलेड इट। आई वॉज सपोज टू हियर क्यूज एंड नो लॉन्गर डिड।
मेरे पास एक पटकथा होनी चाहिए थी और मैंने उसे खो दिया था। मुझे इशारे सुनने थे पर अब सुनाई नहीं देते थे।
ये कितनी खूबसूरती से उस दौर की दिशाहीनता और व्यक्तिगत उलझन को बयान करता है। बिल्कुल। और एक पंक्ति जो बार बार याद आती है, जो उन्होंने कवि येट्स से उधार ली है, द सेंटर वॉज नॉट होल्डिंग,
केंद्र टिक नहीं पा रहा था।
हाँ, यानी समाज को जो चीजें बांध कर रखती हैं, साझा मूल्य, विश्वास, संस्थाएं, वो कमजोर पड़ रही थी। सब कुछ बिखर रहा था। डिडियन ने इसे उस दशक का तकिया कलाम बना दिया था।
कैलिफोर्निया के बारे में भी उनकी एक बहुत सटीक टिप्पणी है। कैलिफोर्निया इज अ प्लेस इन विच अ बूम मेंटालिटी एंड अ सेंस ऑफ चेकोवियन लॉस मीट एन अनईजी सस्पेंशन।
कैलिफोर्निया एक ऐसी जगह है जहां तरक्की की जबरदस्त उम्मीद और सब कुछ खो जाने का गहरा एहसास एक अजीब से तनाव में साथ साथ रहते हैं।
ये विरोधाभास शायद आज भी कैलिफोर्निया और शायद पूरी दुनिया के कई हिस्सों पर लागू होता है। तरक्की और नुकसान का डर एक साथ।
हाँ, बिल्कुल।
ये सब बातें 60-70 के दशक की हैं, लेकिन सुनने वालों के मन में ये सवाल आ सकता है कि आज इनका क्या मतलब है? हम इन बातों से क्या सीख सकते हैं अपने जीवन में?
मुझे लगता है बहुत कुछ। पहली बात तो ये कि अपने व्यक्तिगत संकटों को बड़े सामाजिक संदर्भ में देखना सीखें। अगर हम आज के दौर में बेचैन हैं, चिंतित हैं, चीजों को लेकर उलझन में हैं, तो हो सकता है ये सिर्फ हमारी निजी कमी ना हो।
हाँ,
बल्कि हम उस बड़े माहौल पर प्रतिक्रिया दे रहे हों जिसमें हम जी रहे हैं। आज भारत में भी जिस तेजी से बदलाव आ रहे हैं, नई तकनीकें आ रही हैं, पुरानी पहचानें बदल रही हैं, उसमें यह समझना जरूरी है।
सही कहा।
दूसरी बात, हर तरह की कहानियों और सूचनाओं पर सवाल उठाना सीखें। डिडियन हमें सिखाती हैं कि सतह पर जो दिख रहा है जरूरी नहीं वही सच हो।
हाँ,
आज सोशल मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जमाने में यह हुनर तो बहुत ही जरूरी है। कोई भी खबर, कोई भी दावा, कोई भी बड़ी कहानी सुनने पर रुक कर सोचें, इसे कौन बता रहा है, क्यों बता रहा है, क्या इसमें कोई एजेंडा छिपा है, क्या यह चीजों को ज्यादा आसान बनाकर पेश कर रहा है। हाँ, ये आलोचनात्मक सोच विकसित करना बहुत जरूरी है। तीसरा, तेजी से बदलते दौर में अपनी पहचान और संतुलन कैसे बनाए रखें। डिडियन का लेखन दिखाता है कि बाहरी शोर और उथल पुथल के बीच अपने अंदर की आवाज सुनना, अपने अनुभवों पर भरोसा करना कितना जरूरी है। पूरी तरह कट जाना भी ठीक नहीं और पूरी तरह बह जाना भी ठीक नहीं। शायद संतुलन साधना ही कुंजी है। जैसे काम और निजी जीवन में संतुलन, या ऑनलाइन और ऑफलाइन दुनिया में संतुलन।
और शायद सबसे अहम सबक, दुनिया की जटिलता और अस्पष्टता को स्वीकार करना। हर चीज का साफ सुथरा हाँ या ना में जवाब नहीं होता। जिंदगी अक्सर ग्रे एरिया में जी जाती है ना?
बिल्कुल। डिडियन की तरह हमें भी शायद इस अनिश्चितता और उलझन के साथ जीना सीखना होगा, बिना जल्दी से किसी आसान जवाब या किसी बात की शरण लिए। कभी कभी सिर्फ ध्यान से देखना और महसूस करना ही काफी होता है।
बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि द व्हाइट एल्बम से आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या रहा, तो आप क्या कहेंगे?
और वो जिस पैनी नजर से चीजों को देखती हैं, बिना किसी लाग लपेट के, वो कमाल का है। वो हमें सिखाती हैं कि असहज सच का सामना कैसे किया जाए, चाहे वो बाहरी दुनिया का हो या अपने अंदर का।
हाँ,
और ये जानना कि कहानी गढ़ना हमारी कितनी गहरी जरूरत है, ये भी मेरे लिए बड़ा सबक था।
और मेरे लिए ये सीखना कि बड़े सच अक्सर छोटी, नजरअंदाज की गई डिटेल्स में छिपे होते हैं। डीडीएन का ध्यान पानी के पंप, किसी ड्रेस या रिकॉर्डिंग स्टूडियो के माहौल पर जाता है और वो वहीं से बड़े सामाजिक या मनोवैज्ञानिक पैटर्न पकड़ लेती हैं।
हाँ।
आज के इस शोर भरे, सनसनीखेज मीडिया युग में उनकी ये शांत, ध्यानमग्न नज़र और हर चीज पर संदेह करने की हिम्मत हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। ये किताब सिर्फ गुजरे जमाने का दस्तावेज नहीं, ये आज को समझने का और शायद खुद को समझने का भी एक जरूरी आईना है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।